यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां चरणान्तिके की पाठ करो हमारा चैतन्य चरितामृत, हम लोग चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी, जिसको कहते हैं सनातन शिक्षा। उसमें उन्होंने जीव तत्व के संबंध में, कृष्ण तत्व के संबंध में उन्होंने बतलाया। जीव तत्व किसको कहते हैं? कृष्ण तत्व के संबंध में पूरा बतलाया। माया किसको कहते हैं ये भी बतलाया। ये सब बतला करके कहा कि तुम कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करने से माया तुरंत तुम्हें छोड़ देगी और भगवत प्रेम मिलेगा। वो भजन क्या है? क्या भजन करने के लिए कहा? कैसे भजन करने के? वही हम लोगों को खोज करना चाहिए जे कैसे भजन किया जाए जिससे कि माया जल छूट जाए और कृष्ण प्रेम सहज ही प्राप्त हो। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। यदि हम लोग उसका अनुशीलन नहीं करेंगे तो लाख चेष्टा करने पर भी, कोटि जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पद प्रेम धाम। एक जन्म में नहीं, कोटि जन्म में अपनी इच्छा अनुसार में यदि हम नाम कीर्तन करेंगे, श्रवण भी करेंगे हम, तो कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात रहे। संसार न है खोए, संसार भी नहीं दूर जाएगा, कामना वासना नहीं जाएगी। और हम लोग इसको देख रहे हैं अच्छी तरह से, साधन भजन करते हैं किंतु माया के प्रति आकर्षण, अपने शरीर के प्रति, सुख के प्रति आकर्षण, ये सब दूर नहीं होता। कैसे भजन करने के? तो वो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को बतलाया। साधु संग बिना कोनो कर्मे भक्ति न, बतलाया ना
कि महादेव कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति
न। साधु संग जन्म मूल है,
कृष्ण भक्ति जन्म मूल है,
कृष्ण भक्ति जन्म मूल है
साधु संग।
साधु संग कृष्ण भक्ति का जन्म मूल क्या है? साधु संग। यदि हम अपने मन से गुरु जी ने दीक्षा दे दिया तो जाओ हरिनाम करो, और वो हरिनाम करने लगा और कुछ से पूछता नहीं जैसे कैसे क्या करना चाहिए, अपने मन से वो कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे कोटि जन्मों में करने से नहीं होगा। क्यों? साधु संघ का जन्म मूल क्या है, भक्ति का जन्म मूल क्या है? साधु संघ है कि इसलिए भक्ति का जन्म तो होगा साधु संघ से। साधु संघ कहते हैं किसको? साधु के संग में रहेंगे किंतु उससे पूछेंगे नहीं जो क्या करना चाहिए, करेंगे हम अपने मन से। अपने मन से जो कुछ होगा हम कृष्ण की भक्ति कर लेंगे, दिन रात करेंगे, तो वो क्या होगा ऐसे भक्ति से? बतलाया है जी आतंत की भक्ति भी यदि करते हैं और शास्त्रों के प्रतिकूल करते हैं, शास्त्रों के आदेश को मान करके नहीं चलते हैं, तो क्या होगा? उत्पात वकेवल की श्लोक तो पूरा की श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की भक्ति, एकांत की भक्ति में अपने मन से यदि कर रहे हैं ना, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, खूब करेंगे, तो उससे क्या होगा? यदि साधु संघ के आदेश में हम नहीं चलेंगे, उनकी बात में वो नहीं चलेंगे, कैसे कह रहे हैं चलने के लिए? जैसे उनको नारद जी ने व्यास जी को कहा जी ऐसे चलो, तुमने अब तक मनमानी ढंग से चला, शास्त्र बनाया, महाभारत लिखा और ये सब काम किया, अब इसको छोड़ो, अपने मनमानी छोड़ो, अब जो मैं कहता हूं वैसे चलो, तब फिर उनसे भागवत लिखवाया। ऐसे ही साधु संग में रहते हैं, गुरु जी की वैष्णव के संग में रहते हैं और करते हैं अपने मन की, तो उससे क्या होगा? काम की तरंगे उठेंगी और लेकर के डुबा देगी, कामना वासना सब उठेगी। हरि भक्त एकांतिक हरि भक्ति उत्पात केवल, वो क्या करेगी? सेक जल पाइया उपाशाखा बढ़ी जाए और मूल सखा शब्द भैया, एकांतिक भक्ति करेंगे हम, अनन्या भक्ति राधा जी की, कृष्ण की भक्ति करेंगे, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वैष्णव के अनुगत्य में नहीं कर रहे, और श्रुति स्मृति पंचरात्र में जो कि उपदेश दिया है, साधु संग ही भक्ति का मूल है, और इसकी उपेक्षा करके हम कहते हैं वो क्या कहेंगे, हम अपने मन से करेंगे और भक्ति को दो दिन में ले लें, कहते हैं उत्पात है, उत्पात हो जाएगा, जैसे लाखों लोगों को उत्पात होता है, इसलिए उनके अनुगत्य में उन्होंने जो भजन किया है उसके अनुभवों को लेकर के भजन करो, ऐसे करो ऐसे करो, और नहीं तो उत्पाते पौड़ी चितपाते जाए, ऐसा ही हो गया। खोज ले खूब सावधानी से। इसलिए साधु भक्ति का जन्म मूल क्या है? साधु संग, रसिक सिद्धांतविद भावुक भक्तों के संग के बिना रागानुगा भक्ति प्रेमा भक्ति तो होगी नहीं। प्रेमा भक्ति माने रागानुगा भक्ति, ये कभी कदापि संभव नहीं है। विदाउट एसोसिएशन ऑफ रसिक वैष्णव सिद्धांत विद एंड भावुक भक्त, रागानुगा और प्रेमा भक्ति विल नॉट कम इन आवर हार्ट। इसलिए उनकी कृपा से ये सब होता है, इसलिए हम लोग वही करेंगे उसी तरह से, जैसा कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसा साधु संघ हम करेंगे। यदि परीक्षित महाराज जी वहां पर थे और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि नहीं आते तो क्या होता? क्या होता कल्पना करो, जो भागवत भी नहीं प्रकाश होता और उनको भक्ति भी नहीं होती, भक्ति नहीं होती उनको, प्रेम नहीं होता। यद्यपि वो नित्य परिकर हैं, उनको तो है ही है, वो दिखला रहे हैं, भागवत सुनने से भी नहीं होगा, केवल कामना आ जाएगी। एक जगह कहीं लिखा है यदि वैसे गुरु चरणों में भक्तों के चरणों में शरणागति नहीं है, रसिक वैष्णवों का संग नहीं है, तो यदि भागवत पाठ कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कोई कामना वासना बढ़ जाएगी, शेख जलपाइया उपशाखा, उपशाखा माने कामना वासना कुटी नाटी लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही सब आएगा। और हम समझेंगे अब तो एकांतिक भक्ति अब हम मैदान मार लिया, मैदान हमारा मेरे लीला बस और कुछ तो नहीं दे दी कि छेले आछे हमार देखुन तो छेले आछे ना मैं वो जो छेले में कुछ ही नहीं कि आछे मूसल आछे तुम्हार कुल के ध्वंस कर दे। ये सब विचार करके हम लोगों को वैष्णवों के अनुगत्य में गुरु के अनुगत्य में भजन करना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु ने जो जो तरीका बतलाया उसको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से साधु संत में मुख से रसिक वैष्णव के या सिद्धांतविद अंततः मध्यम अधिकारी भी भक्त हो जिसके अनर्थ अब दूर हो रहे हैं, अनर्थ युक्त मनुष्यों के मुख से सुनने से कुछ नहीं होगा। अब एक आदमी कह रहे थे जिसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, गोसाई महाराज जी उनके शिष्य थे, उनके शिष्य हैं और ललिता बाबू जी के यहाँ जाकर के रागानुगा वैष्णव भजन सीख रहे हैं तो वो चितपात में जाएंगे। ललिता बाबू का जीवन भर का काम था प्रभुपाद जी की निंदा करना, उनका समझ में नहीं आता है उन लोगों को। इसलिए प्रभुपाद के प्रति जो एकांत निष्ठा संपन्न है ऐसे लोगों के साथ में भजन करने से होगा। इसलिए यह सब विचार करके चैतन्य चैतामृत पढ़ो खूब मैन्युअली, श्रीमद भागवत भी पढ़ना हो जाएगा, सब हो जाएगा और भक्ति का लाइन में हम लोग रहेंगे। विशेष करके नहीं समझ में आता है ऐसे जो वैष्णव हैं उनसे इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझो, पढ़ करके उसको ज्ञान के रूप में लेना एक चीज और अनुभव में लेना उसको भजन साधन करके एक चीज। अनुभव करने के लिए भजन करने के लिए विद्या बुद्धि पांडित्य की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए साधन भजन करने की जरूरत है उससे होगा, अब भगवान अनुग्रह करेंगे वो भी हो जाएगा। इसलिए इस पर जोर दो, जो अभी कल मर जाएंगे कि परसों मर जाएंगे इसके पहले हम कुछ भजन कर लें शुद्ध रूप में, यदि उससे हो जाता ना तो बहुत लोग कितने पढ़े लिखे हैं भजन से उनका कोई भी संबंध नहीं। इसलिए महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया, महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया, महाप्रभु जी ने राय रामानंद से जो शिक्षा ली और महाप्रभु जी ने रथ यात्रा के समय में वो राय रामानंद स्वरूप दामोदर और श्रीवास पंडित में जो कथन पथन कराया, ये सब चीजों को समझने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। केवल दिन रात इसी में चिंता में रहे और इन चीजों को ग्रहण करने की चेष्टा करें तो वो कृपा करके भक्ति देवी हृदय में अपने आप प्रकाशित होंगे वैष्णव के अनुगत में भजन करने से, यही साधु संत। हम लोग अभी अंत लीला सप्तम स्कंध सप्तम परिच्छेद से दो चार बातें हम लोग बतला रहे हैं। चैतन्य चरणान भोजम मकरंद लेहो लीहो भजे जेशाम प्रसाद मात्रेण पामरो अपि अपामरो भवे। चैतन्य चरण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के मकरंद का जो लेहन करने वाले हैं, आस्वादन करने वाले हैं, चाटने वाले हैं, मुख में जैसे अंगूठा देकर के चाटते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों के मकरंद को रस को जो मुख में चूसते रहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूं, भजे मैं उनका सेवा करता हूं, जिनकी कृपा से पामर भी अपि अपामरो, पामर भी अपि अपामरो, अपामर माने क्या, जगत को भी पवित्र कर देने वाला बन जाता है
निष्पाप।
नहीं, पामर जो है ना वो तो पामर है, अपामर माने उसको कहेंगे यहां उसकी अंत शब्द की मुक्त प्रग्रह वृत्ति से जगत को भी अपामन कर देता है, ऐसा बन जाता है, जिसको स्पर्श कर दे वो अपामर हो जाए, अर्थात परम पवित्र होकर के कृष्ण प्रेम लाभ कर लेता है जिनकी कृपा से। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अवलेहन करने वाले कौन है? गदाधर पंडित जी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये सब उनके चरणों का मकरंद लेहन करने वाले हैं। रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, ये सब लोग हैं। इन लोगों के संग मात्र से ही हम पामर जो हैं, पामर माने अत्यंत नीच, पामर, पामर माने पा, पैर का सबसे नीचे भाग क्या है? ये तलवा है, उसे रगड़ करके जो मार दिया गया, मरना, पामर, अत्यंत नीच तुच्छ, विषयों में आसक्त, भोगों में आसक्त, दिन रात विषय चिंतन करने वाला, ऐसा जो पामर है, जैसे जगाई मदाई लाखों आदमी थे, सिंह भालू, ये सब को चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों ने एकदम ऐसा बना दिया कि उन लोगों को चिंतामणि बना दिया, और उन लोगों ने जिसको स्पर्श कर दिया वो ऐसे बने, जगत को पवित्र बनने वाले, पवित्र बनाने वाले हो गए सभी लोग। किस लिए कर रहे हैं? इनको कुछ कहना है, किसको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कुछ ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों के मकरंद ले ही जो भक्त हैं उनकी कुछ महिमा सुनाने की इनकी लालसा हुई है, इसलिए ये बतला रहे हैं। कैसे बतलाएंगे? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, वर्षांतरे जत गौड़ेर भक्तगण आईगा, पूर्वत महाप्रभु सवारे में। रथ यात्रा में जैसे भक्त लोग, गौड़ीय लोग आते थे जगन्नाथपुरी में, वैसे इस वर्ष भी वर्षा के प्रारंभ में ही, वर्षांतरे, वर्ष के अंतर में, एक वर्ष बाद में, आषाढ़ के महीने में, उससे पहले सब गौड़ीय वैष्णव लोग वहाँ पर पधारे, पूर्वत मिले, महाप्रभु से मिले, यही मत विलास प्रभु भक्त बने लिया, इसका पहले बहुत सा वर्णन किया है, रथ यात्रा का प्रसंग वर्णन किया, भक्तों के साथ में उनका विलास वर्णन किया, और कुछ और चीज वर्णन कर, भजन कैसे होगा इसके संबंध में बताया। भजन में एक अभिमान ऐसी चीज है जो भजन नहीं करने देता। तुम्हारे पीछे कौन है? सो रहा है, सो रहा है, नींद आ रही है? क्या बतला है?
तो भजन अभिमान,
भजन कैसे होगा? महाविद्वान होकर के, भागवत की टीका लिखने वाला व्यक्ति भी, जो भागवत के टीका लिखता है, मायावाद का खंडन करने वाला भी व्यक्ति है, और आचार्य 60,000 सब ऋषियों का गुरु भी है, तो भी भजन नहीं हो सकता है, वो एकांति हरि भक्ति भी नहीं होगी, उत्पात ही होगी, जब मेरी अभिमान रहा। इसलिए अभिमान को निकालना है, अभिमान नीचे से लेकर के ऊपर तक, मैं ये शरीर हूं, मैं एक मूर्ख भी समझता कि मैं बुद्धिमान हूं, और कुछ पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति भी वो समझेगा, हम कोई एक संसारिक दक्षता कुछ मिल गई किसी को, मैं ऐसा, संसार का कोई भी कोई गुण भी किसी व्यक्ति में आ जाए, सुंदरता है, बलिष्ठता है, कार्य दक्षता है, किसी भी विषय में हो, उसका अभिमान होना स्वाभाविक है जी, यह अभिमान डुबो देती है। विशेष करके चार प्रकार का अभिमान बतलाया, जन्म ऐश्वर्य सुत सीधी एधमान मद, ये चार अभिमान है जो भक्ति को बढ़ने नहीं देते। जन्म ऐश्वर्य, धन संपत्ति, उच्च कुल में जन्म संपत्ति इत्यादि, और विद्या का मत, और उच्च कुल में जन्म लेने का मत, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत माने विद्या,
ये सब जहां अभिमान हुआ वो नहीं आने देगा। वल्लभाचार्य जैसे व्यक्ति बड़े विद्वान आदमी, ऐसे विद्वान जो भारतवर्ष में सब जगह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में घूमे और सब बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया और भागवत की टीका लिखी, इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने जो टीका लिखी है उसमें कुछ मायावाद का पुट है, अद्वैतवाद है, इसलिए उन्होंने सोचा कि तो इसमें तो मायावाद का भाव है, इसलिए शुद्ध रसिक में टीका करूंगा जैसे कि वैष्णव लोग भगवान की भक्ति को सहज ही पा सके, और लिख करके और तब मायावाद का खंडन करते 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 दक्षिण भारत का जब पराजय कर दिया सबको तो विजयनगरम में उनका कनकाभिषेक हुआ। जी गोस्वामी ने इसमें तत्व संदर्भ इत्यादि में और अपने वो संदर्भों के बाद में वो कौन सी उन्होंने अद्वैतवाद से दो चार प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं में से एक दो प्रश्नों को लेकर के उन्होंने ये पूछा मायावादियों से, ये जो माया है ब्रह्म को लगती है न जीव को लगती है ये बतलाओ, यदि कहो जो ब्रह्म को तभी तुम हारोगे, यदि कहो जो जीव को लगती है तभी हारोगे, तुम कहो कुछ, हाँ कहो जो जीव को लगती है कि ब्रह्म को, तुम कुछ भी उत्तर देगा जरूर हारेगा, मायावादी से खंडन हो जाए, बस यही एक प्रश्न जहां गए वही प्रश्न पूछा और सब लोगों को परास्त कर दिया। यदि कहता है जो ब्रह्म को तो माया ये द्वितीय कहां से आई, अब ब्रह्म तो सब समय
निर्विकार
इत्यादि और सब समय ज्ञान संपन्न है, उसको माया लगेगी कहां, माया दूसरी चीज का। यदि कहो जीव को तो जीव कहां से हो गया, इसलिए कहो जो जीव को तभी हारेगा, यदि कहो जो ब्रह्म को लगते है तभी हारेगा, सब प्रकार से हारेगा, इस एक प्रश्न में सब लोगों को हरा दे। तो उनका 108 घड़ों से सोने के घड़े से विजयनगर के राजा जी ने उनको अभिषेक किया, इतना बड़ा भारी दिग्विजय पंडित वल्लभाचार्य हैं। तब वहीं से पुरी में आए, भक्त लोग अभी पुरी में हैं, रथ यात्रा समाप्त हो गई थी और वो वहां पर पहुंचे, महाप्रभु की सभा रोज लगती थी वो जहां उनका
टोटा गोपीनाथ
या गंभीरा के आंगन में सब भक्त लोग वहां पर एकत्र, काशी मिश्र भवन में, उस समय जैसा ये मंदिर इत्यादि चारों तरफ में घिर गया ऐसा नहीं, काफी बड़ा कोर्ट यार्ड आंगन था और उसमें कौन कौन बैठते थे, बृहस्पति के गुरु बैठते थे सार्वभौम भट्टाचार्य और बैठते थे उनके भी गुरु स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु जी, शिवास पंडित जी, गदाधर पंडित जी, नरहरि सरकार और कितने, और उस समय में रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बालक कहाँ दूर छिटके हुए रहते थे, उनका ही उस सभा में नहीं कोई ये था, ऐसे बड़े बड़े दिग्विजयी विश्व विजयी विद्वानों की सभा और रसिक वैष्णव सब समस्त शास्त्रों में पारंगत, वो इस जगत के व्यक्ति ही नहीं थे, वो तो कृष्ण के परिकर थे, साथ लेकर के उन लोगों को लेकर के आए थे अपने लीला में सहायक बनाकर और जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। तो वो एक दिन वहां पर पहुंचे, उसी का ये प्रसंग और कैसे उनसे बातचीत हुआ और महाप्रभु ने किस प्रकार से उनको उत्तर दिया और कैसे उनका उद्धार किया, इस चीज का यहाँ पर वर्णन। एई मत विलास प्रभु भक्त गण लइया, हेन काले वल्लभ भट्ट मिली लो आशी। ये विद्वान की बात कह रहा, ऐसे परम विद्वान दिग्विजयी पंडित सर्वशास्त्र निपुण मर्यादामयी भक्ति और
पुष्टि मार्गीय
भक्ति आता तो बधिया और इसमें भी पारंगत, भागवत की एकदम बड़ी क्या टीका का नाम सुबोधनी किंतु दुर्बोधनी है, सुबोधनी नाम लिखा है किंतु सुबोधनी नहीं है, बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका सुबोधनी कही जाए। इनकी टीका बड़ी कठिन है, साधारण आदमी इसमें दांत नहीं गला सकता, बड़ी कठिन है। तो अभी उन्होंने सुबोधनी लिखा है। तो हेन काले वल्लभ भट्ट मिलिलासि, वल्लभ भट्ट जी वहां पर उपस्थित थे, बड़ी भारी गठरी सिर पर लेकर के, किस चीज का गठरी, अभिमान की गठरी लेकर के आए। मैं बड़ा भारी विद्वान हूं और भागवत पर हमने टीका लिखा, वेदांत की टीका हमने लिखी है, वेदांत में पारंगत हूं, सब पुराण हमने पढ़ डाले, मैं आचार्य हूं। कितने उनके शिष्य अभी भी उत्तर भारत में, गुजरात एकाधिकार उनका, और उस समय में सात घड़ा मथुरा में, समस्त मथुरा में उनका संप्रदाय का सब लोग उन्हीं को मानते, बड़े बड़े जितने चौबे लोग हैं विद्वान लोग, सब उनके मतावलंबी, कुछ लोग हैं अद्वैतवादी और कुछ लोग हैं वल्लभाचार्य। गौड़ीय वैष्णव का प्रभाव अभी तक चौबों पर नहीं हुआ, कोई भी चौबे गौड़ीय वैष्णव अभी तक नहीं, वल्लभाचार्य हम लोगों के वो पंडा जी हैं, वो भी यमुना प्रसाद जी उनके पिताजी थे, वो सब लोग उनका इतना प्रभाव था, यहाँ तक कि ब्रज के गाँव गाँव में भी वल्लभाचार्य, क्योंकि परिक्रमा वो करते, हमारे सनातन गोस्वामी रूप इत्यादि रहते थे ब्रज में, किंतु बहुत कम लोग उनके इन भावों को समझ सके। आशिया बंदी भट्ट प्रभु रचर, प्रभु भागवत बुद्धे कैला आलिंगन, महाप्रभु जी को उन्होंने देखा, अरे इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक मर्यादा है, मर्यादा की परिकर को देख करके श्रद्धा होती है, वैभव देख करके, एक मूर्ख आदमी भी राजगद्दी पर बैठ जाए ना, प्रेसिडेंट भारतवर्ष का बन जाए, और बड़ा भारी विद्वान आदमी जब प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो क्या करेगा, उसका वैभव देखा जी, हजारों लोग उसके नीचे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और ये राष्ट्र का राष्ट्रपति है, तो अंततः उनको प्रणाम कर। इसलिए ये प्रभु रचरण है, प्रभु भागवत बुद्धे कैलाली, प्रभु जी ने उनको, महाप्रभु जी ने उनको भागवत बुद्धि से आलिंगन किया। प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद हो कृष्ण मति रस्तु, ये सब नहीं कहा, या और कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, कृष्ण भक्ति हो ऐसा भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और उनको समान के रूप में भागवत उत्तम मान करके भागवत बुद्धि कैला आलिंगन, बस इतना ही आलिंगन किया। भागवत बुद्धि क्यों, इसके पहले महाप्रभु से वो मिल चुके थे, महाप्रभु जी उनसे मिले थे अड़ाई ग्राम में, और उस समय में अधिक तो वार्तालाप नहीं, किंतु थोड़ा सा वार्तालाप हुआ था, बिना, जब तक कोई मूर्ख मुख नहीं खोलता है तब तक उसको ये नहीं समझा जाएगा ये मूर्ख है कि विद्वान आदमी है, मुख खोलेगा उसके वचन से ही मालूम हो जाएगा ये मूर्ख है कि कैसे, ऐसे नहीं मालूम। जबकि जनक महाराज जी के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे, जब तक मुख नहीं खोले तब तक, अरे ये कहाँ से मूर्ख आदमी आ गया, ऐसा एक देवाय थटे हैं, काला कल उठा और मलिन, ये सब कहाँ से बेकूफ आ गया, और जब दो चार उन्होंने बात कही तो उन्होंने लेकर के उनको गोदी में लेकर के अपने सिंहासन पर बैठा करके उसके चरण की पूजा करने लगे। इसलिए महाप्रभु जी को उन्होंने वहां पर पहुंचा, श्याम एव परम रूपम, पुरी मथुरी मथुरा पुरी बरा बया कैशोरकम धेयम आद्य एव, जब इसकी व्याख्या महाप्रभु जी से सुनी चमत्कृत हो गए, कहे ये मनुष्य का काम नहीं, मनुष्य में ये चीजें कहां से आएगी। महाप्रभु को वहां पर विचार देखे और भावावश देखा, जमुना को देख, गंगा जी को जमुना को देख करके, उसके पानी को श्याम देख करके, श्याम समझ कर उसमें कूद पड़े, बड़ी मुश्किल से बचाए, नदी में भाव से इधर उधर गिर रहे हैं और नौका डूबने लग गई, का ये साधारण व्यक्ति लक्षण को देख करके, वो भी तटस्थ लक्षण को देख करके, वो मूल जो स्वरूप लक्षण है ये नहीं, तटस्थ लक्षण से ये विचार किया, ये साधारण आदमी, इसलिए उनको उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने उसको आलिंगन करके मान्य कर प्रभु तारे निकटे बोलाइला, विनय करिला भट्ट कहिते लागिला। मान्य करे प्रभु उनको सम्मान यथा योग्य सम्मान दे करके अपने निकट आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, उनको मान्य करके ब्राह्मण के महाप्रभु जी से भी उम्र में बहुत बड़े थे, महाप्रभु जी होंगे अभी 40 वर्ष के, 40 वर्ष से भी कम, 16 वर्ष कितना 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और जिसमें से 24 वर्ष यहाँ रहे और गमनागमन किया
6 साल,
कितना
6 वर्ष,
तो 24 और 6
33
वर्ष की उम्र में महाप्रभु जी से समझो जी वृंदावन में भेंट हुई, वृंदावन में अड़ाइल ग्राम, तो उस समय महाप्रभु जी 30 वर्ष के थे और वल्लभाचार्य थे 90 वर्ष के, अद्वैताचार्य की उम्र के थे वो, तो उस समय इनके भावों को देख करके बड़े मुग्ध हो गए और इनका चरण दबाया, घर में खिलाया पिलाया और बड़ी सावधानी के साथ में उनको रूप गोस्वामी के साथ में प्रयाग में उनको दिया, पर संक्षिप्त भेंट हुई, अधिक एक दिन केवल रहे थे कुछ देर तक और फिर लौट गए, इसलिए अधिक संबंध होने का कोई प्रश्न नहीं। इसके बाद उन्होंने वल्लभाचार्य दिग्विजय करके विजयनगर से महाप्रभु के पास में पुरी में आए, यह दूसरी भेंट है। विनय करिया भट्ट कहिते लागिला, अभी तक उनके तटस्थ भाव को देख करके महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हैं, यहां देखा जो विराट इनका ऐश्वर्य, बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें बैठे हैं, इसलिए विनय के साथ में उनसे कहा, यह विनय कैसा, विनय होता है 2 प्रकार का, एक आंतरिक विनय और एक बाह्यिक विनय। आंतरिक विनय किसको कहते हैं, बाह्यिक विनय किसको कहते हैं, मैं विद्वान हूं, अब मैं गुणी हूं, सब गुण हमारे अंदर में है, तभी मैं दीनहीन हूं, ऊपर से जो कहते हैं, यह हुआ लौकिक विनय, सदाचार के लिए विनय होता है, पारमार्थिक विनय ये नहीं है, नम्रता नहीं है, परमार्थिक जो नम्रता है वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी में देखी जा सकती है। किस प्रकार से महाप्रभु के प्रति ये लोग शरणागत थे और एकदम दैन्य की मूर्ति ये लोग थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र जरा हम लोगों से कुछ निकटतम भाव का है, साधक भाव के रूप में, रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र उतना साधनमय नहीं है, उनके जो कुछ उन्होंने लिखा है सिद्ध भूमिका से लिखा है ने? उसको साधन करने के लिए, किंतु कैसे साधन किया जाए, कहा भी है किंतु उनके जीवन में आचरण करके वो नहीं दिखाया उतना जितना कि दिखलाया है दास गोस्वामी। इसलिए साधक के लिए, रूपानुग साधक के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र और साधन भजन हम लोग उससे कुछ सीखेंगे अधिक। रूप गोस्वामी करी करी कुछ सिद्ध भूमिका में जो कुछ लिखा है, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि जो है, भक्त स्वामी सिंधु, ये सब सिद्ध भूमिका में समाधि भाषा की बातें हैं, किंतु उस तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, यद्यपि उन्होंने बतलाया है जो गुरुकरण है, 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, साधन भक्ति भी कैसे किया जाए और सब रघानुगा भजन कैसे किया जाए, ये सब बतलाया है, किंतु प्रैक्टिस में रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब पूर्ण रूप से कर करके दिखलाया अपने जीवन, ऐसे साधन भजन करना, यदि किसी को साधन भजन करना है तो रघुनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से अपना। तो विनय, इनका विनय कैसा था, कुछ लोग, मैं बहुत विद्वान हूं, मैंने परास्त कर दिया है सबको, मैं दिग्विजय पंडित हूं, मैं भागवत का ये सब लिखा हूं, किंतु ऊपर से कुछ दिखला करके कर रहे हैं, विनय करिया भट्ट कहते लगे, विनय करके कहने लगे, बहु दिन मुनरोत तुम्हार देखी बारे, जगन्नाथ पूर्ण कैला देख लू तुम्हारे, जगन्नाथ जी ने हमारे मनोरथ पूर्ण कर दिया है? कि बहुत दिनों से कहा हमारा मनोरथ जी आपसे हमें भेंट करूं, किंतु अभी तक नहीं हो पाया। आज जगन्नाथ जी ने हमारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। महाप्रभु सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब इसमें कुछ गड़बड़ी है। तुम्हार दर्शन ये पाए सही भाग्यवान, तुम्हारे देखिए जनो साक्षात भगवान। मैं आपको साक्षात भगवान के समान ही देख रहा हूं। तुम्हारा जो दर्शन पाता है वो बड़ा भारी बात तो ठीक है, गलत बात नहीं है, किंतु अंतर से कहा या क्या कहा ये पीछे चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आप कहेंगे। ये अंतर की भावना नहीं थी, नहीं तो महाप्रभु जी इनसे बड़ी प्रीति करते, प्रीति पूर्वक व्यवहार करते। तुम्हार जे स्मरण करे से है पवित्र, दर्शने पवित्र हवे इथे की विचित्र। तुम्हारा जो स्मरण करता है जे संग संस्मरणात् शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचासन आदि। अरे जिनकी दर्शन चिंतन मात्र से ही घर पवित्र हो जाता है, वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अब पुनः यदि वो व्यक्ति ऐसे वैष्णवों का ये पैर धोए, चरणामृत पान करे, हरि कथा सुने, उनका संग हो तो कहना ही क्या, केवल उनके संस्मरणार्थ स्मरण करने से उन वैष्णवों के लिए गृह के साथ में परिवार के सहित में वो सबका वो शुद्ध हो जाए। शुद्ध माने कृष्ण भक्ति लाभ करे। और यदि उनका चरण स्पर्श करे, चरण धौत जल पान करे, चरण की धूली का सेवन करे, उनकी हरि कथा श्रवण करे, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करे, तो फिर कहना ही क्या ने? महाप्रभु जी को वो कह रहे हैं जो स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। फिर आपका दर्शन से पवित्र हो जाएगा ये तो कोई बात नहीं, मैं पवित्र हो गया। वही लिखा है जे सांग संस्मरणा कुंसो सद्य शुद्धंत वही गृह किम पुनर्स्पर्शन
दर्शन
स्पर्श पाद शौचासन आदि भी कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण भक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कलिजु का नाम कलिजु का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण भक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कृष्ण भक्ति जिसको नहीं है वो उसका प्रवर्तन नहीं कर सकता। जिसको कृष्ण भक्ति है वही इसका प्रचार, प्रवर्तन माने प्रचार, वही प्रचार कर सकता है, किसी के हमदर में भक्ति का प्रवेश कराएगा। और जिसको भक्ति नहीं है केवल प्रचार कर रहा है उसे कुछ नहीं होगा, उसको भी भक्ति नहीं होगी, दूसरे को नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं आचार नहीं है किंतु प्रचार करते हैं, और कुछ लोग प्रचार नहीं करते केवल आचार करते हैं। तो उन लोगों में जो केवल प्रचार करते हैं उनसे आचार करने वाले अच्छे हैं, किंतु उनसे भी अच्छे हैं जो आचार और प्रचार दोनों करते हैं। किंतु सचमुच में जन्म सार्थक करी करो, पहले जन्म सार्थक करो, भक्ति पहले हृदय में हो, तहां प्रवर्तैला तुम्हें प्रवर्तैला तुम्हें यही तो प्रमाण। तुम महाभागवत हो और आपने भक्ति है और आप नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं तो इसका प्रमाण है, जैसे तुमने जहां जहां तुम गए वहां पर भक्ति का प्रचार आपने किया, सब लोगों में भक्ति का प्रवेश कराया, इसलिए आप वश हैं, आपके हृदय में भक्ति है। कृष्ण भक्ति धरो तुम्हें इथे नहीं आ, आपने कृष्ण भक्ति है तो पहले जो कहा जो आप भगवान हैं और फिर ये कहते हैं ये कृष्ण भक्ति आप में है तो ये क्या हुआ परस्पर, ये बात हुई कि कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले भगवान कह दिया, किस लिए कहा, साधारण रूप में कहते हैं आप भगवान ही हैं इसलिए उनको कह दिया भगवान, किंतु फिर वहां से टर्न करके और कॉन्ट्राडिक्टरी बात उन्होंने इसका विरोधी बात कहा, ओ आप में कृष्ण भक्ति है। यदि कोई कृष्ण को कहे जी आप में कृष्ण भक्ति है तो ये कृष्ण की प्रशंसा हुई ना उनकी निंदा हुई, क्या हुआ। यदि चैतन्य महाप्रभु में कोई कहता है कि आप में महाप्रभु के प्रति कृष्ण के प्रति राधा के प्रति बड़ी भक्ति है और आप उस भक्ति से जगत का उद्धार करते हैं तो ये बात कैसी हुई,
उपहास,
एक तरह से हंसी की बात हो गई, उपहास की बात हो गई। इसलिए इससे पता चल जाता है कि ये भक्ति कैसा है। तो जगत में भी विचार करने वाले हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। विचार करीले तापरे पावे चित्ते चमत्कार। भक्ति को विचारण पड़ा, भक्त विमोचन न रहा। यदि कोई विचार करता है अच्छी तरह से, विवेचन करके, तब देखता है कि महाप्रभु के प्रत्येक लीला चरित्र में ही बड़ी विचित्रताएं हैं।
तत्श्रेणन सुपठन विचारणो करो भक्ति आगमचन।
इसलिए देखो फिर ये कहते हैं कृष्ण भक्ति भरो तुमी इथे नहीं आए। वो तो प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु हो गई प्रशंसा के बदले कुछ गड़बड़। महाप्रभु समझ रहे हैं कि हमको कहा ये भगवान, किंतु भगवान हमको नहीं मानता। उन्होंने उसके बाद से समझ लिया। हाँड़ी में चावल देखा, अभी पका नहीं, अभी कच्चा है। समझ लिया कि अभी सब हाँड़ी में जितने चावल हैं वो सब क्या हैं, अभी कच्चे हैं, अभी सब पके नहीं, वो समझ गया। और एक उठाया और देखा जिसे ना, देखे ये पक गया, तो बस झट उठा कर ये सब ही पक गया है। महाप्रभु जी ने समझा इसके अंदर में कुछ गड़बड़ी है। जगत करिला तुम्हें कृष्णाम प्रकाश, जय तो मां देखे से ही कृष्ण प्रेमे भाषे। जो कोई तुमको देखता है वो कृष्ण प्रेम में एकदम डूबने उतराने लगता है। ये भी ठीक है, कुछ ठीक भी है, कुछ ऐसा भी। प्रेम प्रकाश नहे कृष्ण शक्ति भी नहीं, ये भी ठीक है। जिसमें कृष्ण शक्ति का प्रकाश नहीं है, कृष्ण शक्ति माने वही भक्ति, जिसमें नहीं है वो कृष्ण भक्ति का प्रकाश नहीं कर सकता, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। वो उससे क्या होगा, जंजाल जगत की सृष्टि होगी। जिसमें भक्ति नहीं है, खुद दोज हु हैव नो भक्ति दे कैन प्रीच, इफ दे प्रीच दे विल प्रीच जंजाल बंदी माया नथिंग एल्स। दे विल ब्रिंग द डिवोटीज हु आर फुल ऑफ माया इमोशन एंड वर्डली लव। इसलिए पहले शुद्ध भक्ति हो, वही शक्ति है, वही संसार को उद्धार कर सकता है। तो प्रेम प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश बिना भक्ति के नहीं हो सकता है। कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रण, एक कृष्ण ही प्रेम को देने वाले हैं। और कृष्ण जिसमें प्रेरणा करके कर देंगे वही कृष्ण का प्रकाश कर सकता है। इसीलिए कहा है संत बहुआ पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णातन्न कोवा लतास्वपि प्रेमदो भवती। ये वल्लभाचार्य जी धड़ धड़ कर व्याख्यान दे रहे हैं महाप्रभु जी के सामने और भक्तों के सामने, और महाप्रभु जी और महाप्रभु के जितने भक्त हैं ऐसे सुन रहे हैं, उनके तरफ में कोई नहीं देख रहे। करें बहुत से अवतार हैं और सब प्रकार से अभद्र हैं वो। अभद्र मैंने सर्वतो भद्र, वो सब प्रकार से भद्र हैं, मंगलदायक हैं सब अवतार। पुष्कर नाभस्य, पुष्कर नाभस्य पद्मनाभ कौन है, गर्भदशाई से ही ये सब अवतार हुए हैं, उनकी मान्यता ऐसी है, ऐसे ही समझ रखो। तो पुष्कर नाभस्य ऐसा भी है, गर्भदशाई से भी अवतार हैं, कर्णाभदशाई से भी हैं, महासंकर्षण से भी हैं, और मूल संकर्षण से भी है, और बलदेव प्रभु जी से भी है। तो यहां पर भागवत का ये है, इसलिए ये कह रहे हैं पुष्कर नाभस्य। पुष्कर नाभव जो भगवान हैं उनके बहुत से अवतार हैं, वो सभी भद्र हैं, मंगलदायक हैं, भक्ति दे देंगे, संसार का विनाश कर देंगे, संसार से पार कर देंगे, मुक्ति दे देंगे, ये सिर्फ कल्याण है। धन संपत्ति और ये सब कर दे देंगे, मुक्ति भी दे देंगे और भक्ति भी दे देंगे, वैकुंठ की भक्ति भी दे देंगे। किंतु कृष्णातन्न को वा लतास्वपि, लता को भी भगवान का प्रेम दे दें, ये ऐसा कोई अवतार, एकमात्र कृष्ण दे, एक लता है जड़ जैसी दिखने वाली, उसको भी ये प्रेम दे सकते हैं। पशु पक्षी की पतंग की तो बात ही किया, ये सब लता तक को भी, तरु पेड़ सबको ये प्रेम दे सकते हैं। ओनली कृष्ण कैन गिव इट, नो अदर, नो राम, नो परादेव, नो कल्कि देव एंड ऑल अवतार्स, दे कैनॉट गिव कृष्ण प्रेम, ओनली कृष्ण प्रेम कृष्ण कैन गिव टू लता मीन्स क्रीपर सेंड ऑल अदर्स, सबको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय
नाम्ने गौरते
हिज कृष्णा हिज नॉट राधा। ही हैज बोरोड द मूड ऑफ राधिका। कृष्ण राधा नहीं है, महाप्रभु जी ये कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के अंदर में तीन इच्छा हुई, उसको पूर्ण करने के लिए राधिका जी से बारो मांगा। बारो माने उधार मांगा। क्या चीज उधार मांगा? अपना भाव थोड़ा सा हमको दे दो। वो भाव क्या? महाभाव का ऊपर जो राधिका के अतिरिक्त किसी में नहीं है, ललिता विशाखा में नहीं, वो मादन भाव। वो मादन भाव उनसे मांगा तो वो मादन भाव उन्होंने दिया। ललिता विशाखा के अंदर में भी नहीं है, चंद्रावली के प्रति में कहीं भी वो राधिका जी के अतिरिक्त वो भाव नहीं है। कहा जब हमको दो दिन के लिए उधार दे दो। राधिका जी ने पूछा किस लिए? तो तुम कितने सुंदर हो ये मैं देखना चाहती, तुम्हारे अंदर में कैसा कृष्ण प्रेम है, ये प्रणय कैसा है ये देखना, और तुमको ये सब अनुभव करके कितना आनंद होता है जब पागलनी बन जाती है, ये मैं देख अनुभव करना चाहता हूं। अजय ठीक है, मैं दो दिन के लिए दूंगा, दूंगी, अधिक दिन के लिए नहीं। अजय ठीक है। तो उन्होंने अखंड काल में महाप्रभु का जो अवतार है कितना 48 वर्ष, ये कितना समय है?
एक क्षण भी
नहीं। उतने क्षण के लिए राधिका जी ने कहा अच्छा तो ले लो, तुमसे निभेगा नहीं अधिक दिन, तुम एक दो दिन में ही बेहाल हो जाएगा।
कभी कुरुमर रूप तो कभी लंबे बन जाए, कभी पीले बन जाए,
तुमसे सहनी नहीं होगा, जैसा मैं सह सकती हूँ तुमसे नहीं होगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुमको दे दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने